सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत एक बार फिर यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आने का मौका मिला है और आकर बहुत प्रसन्नता महसूस हुई आप सभी के दर्शन करके। कल जब यहाँ शिकागो से आगमन हुआ तब भी स्थानीय संगत के अनेकों सदस्यों के दर्शन करने का अवसर मिला और अभी इस विशाल रूप में जहां स्थानीय संगत के अलावा अन्य स्थानों से भी चलकर आए महापुरुष सभी के दर्शन हो रहे हैं और लगातार स्थान स्थान पर रहने वाले साध संगत के अंग उनके इसी प्रकार से दर्शन भी हो रहे हैं, समय भी बिताने को मिल रहा है, सत्संग करने के अवसर मिल रहे हैं, सेवा के जज्बे देखने को मिल रहे हैं और इसी प्रकार से ये तमाम महीने भर से ऊपर का समय ये बीता है हिंदुस्तान से बाहर इन मुल्कों में। और आज इस सत्संग में ऐसे ही सुंदर भाव श्रवण किए गए जो हमें उन पहलुओं की तरफ अग्रसर कर रहे थे जो पहलू जीवन में बहुत महत्ता रखते हैं और उन्हीं पहलुओं को नज़रअंदाज करने वाले या उनसे दूर हटकर जीवन जीने वाले उनका संसार में जो योगदान है वो कितना पीड़ाजनक है और जो अहम पहलू जीवन के लाजिम हैं, ज़रूरी हैं, उन पहलुओं को जो जीवन में विशेषता दे रहे हैं वो औरों के लिए राहत का कारण बन रहे हैं, सुकून का कारण बन रहे हैं। और इसलिए जो सत्संग में हमें जिन पहलुओं की तरफ अग्रसर किया जाता है, जो ये भक्ति का मार्ग है, जो ये आध्यात्मिकता का मार्ग है, ये हमेशा उन्हीं पहलुओं को अब पोषण करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ही प्रेरित करता है। और वो तमाम पहलू हैं, चाहे उसको हम प्यार कह लें, चाहे हम उसको सहनशीलता कह लें, विनम्रता कह लें, उसको हम विशालता कह लें, सबर संतोष कह लें, तो ये ऐसे ऐसे पहलू हैं जीवन के जो जिसके जीवन में भी मजबूत हुए उसने ही जीवन को आनंदमय बनाया है, उसने ही एक यश को प्राप्त किया है। तो ऐसी प्रेरणादायक वचन हमें सत्संग से प्राप्त होते हैं और इसलिए सत्संग को वैकुंठ धाम भी माना गया है कि यहां पर हमें ऐसी खुराक मिलती है जो वाकई हमारे आत्मा मन का पोषण करते हैं और जो संसार में जो प्राप्त होता है वो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उससे रोग और बढ़ते हैं, बीमारियां और बढ़ती हैं। तो इसलिए पोषण जिसको हम कहते हैं वो हमें उस खुराक से मिलती है। जैसे शरीर के लिए भी हम अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू के अगर हम चीजों का सेवन करते हैं, पदार्थों का, तो हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है और इस प्रकार से हमारा एक शरीर तंदुरुस्त रहता है। लेकिन अगर शरीर के लिए भी हम खुराक ऐसी ग्रहण करें जो कहीं किडनी पर असर कर रही है, कहीं पर लिवर पर असर कर रही है, कहीं पर मसल्स के ऊपर असर कर रही है और हमें शरीर को रोगी और जर्जर बना रही है, कहीं हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कैल्शियम का कम सेवन हो रहा है या उसका सेवन हो रहा है जो कमजोर करता है, तो इस तरह से शरीर भी जो जो ग्रहण करता है शरीर उसी प्रकार से वो पलता है या वो कमजोर होता है। इसी प्रकार से हमारे मन आत्मा भी, इसको भी अगर सही खुराक मिलती है और उस खुराक को ग्रहण किया जाता है तो हमारे मन को भी सुंदरता और मजबूती मिलती है और आनंदित होते हैं। और अगर मन ने ही सेवन किया उन भावनाओं का जो वाकई ही हमें भी अपयश दिलवाती हैं और हम औरों के लिए भी हानिकारक बनते हैं, तो हमें एक हासिल कुछ होने की बजाय उल्टा हम अभिशाप बन जाते हैं। तो कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जनों ने सदैव से यही चाहा, यही उनके भाव रहे कि हर इंसान का भला हो। जिसमें भलाई छिपी हुई है जीवन में उसके वो पहलू मजबूत होते चले जाएं, और जिससे नुकसान होता है उससे वो बाज आता चला जाए, उससे वो हटता चला जाए, उससे अपना दामन वो छुड़ाता चला जाए। इसलिए महापुरुषों का योगदान ये बहुत अहम माना गया है, बहुत इसको एक विशेष माना गया है। इसकी महत्ता हमेशा हमेशा से ये रही है, और आज के दौर में तो जब हम चारों तरफ के वातावरण को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि और अधिक इसकी जरूरत है। अगर कलयुग और फिर घोर कलयुग कह देते हैं कि एक तो कलयुग और आगे से घोर कलयुग, अब घोर कलयुग में है तो फिर और ज्यादा इसकी जरूरत, और ज्यादा इन भावनाओं को मजबूती देना। अगर इतनी डार्कनेस बढ़ रही है तो उसको रोशनी में तब्दील करना या रोशनी स्थापित करना, उसके लिए और मशालों का जलना और दीपकों का जलना ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संत महात्मा भक्तजन जो सज्जन प्रवृत्ति वाले हैं वो आज के दौर में भी संसार के लिए वो आशा की किरण वो बने हुए हैं, और हमेशा से संत प्रवृत्ति ही आशा की किरण होती है। वरना तो चारों तरफ से मायूस हो जाते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं और लगता भी नहीं कुछ बचेगा। अगर कहीं रे ऑफ होप हम कहते हैं, अभी भी आज सत्संग में आपने श्रवण किया होप के बारे में, रे ऑफ होप जिसको हम कहते हैं, वो आशा की किरण केवल संत प्रवृत्ति है, वो सज्जन प्रवृत्ति है। पहले भी कहा गया कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि अगर संत भी ना होते तो संसार तो कब का मर मिट गया होता, ये तो कब का जल गया होता। ये तो संतों के कारण ही इस धरती का बचाव है। संतों का मतलब ये नहीं कि किसी इंडिविजुअल की मौजूदगी है इसलिए, नहीं, वो प्रवृत्ति मौजूद है, वो एक प्रवृत्ति मौजूद है इसलिए बचाव है। नॉट ऑल इज लॉस्ट, सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। ठीक है, दुनिया में चोरी चकारी हो रही है, लूटमार हो रही है, धोखेबाजी हो रही है, छल कपट हो रहा है, हक को दबाया जा रहा है, शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वॉर्स हो रही हैं, वायलेंस हो रही है। होने को एक एक करके गिनते जाएं तो नेगेटिविटीज की भरमार पड़ी हुई है, तो लेकिन इसके बावजूद देर इज गुडनेस, इसके बावजूद देर इज इल्यूमिनेशन इन स्पाइट ऑफ सो मच डार्कनेस। तो इस सब के बावजूद अगर ये नेकी बनी हुई है, ये तो वही बात हो जाती है जो एक बहुत पुरातन शायद 50s की मूवी हिंदी में आई थी और उसका टाइटल था कि दिया और तूफान। कि एक दिया और तूफान, कि एक तूफान में भी अगर दीपक जला रहे तो वाकई ही कितनी उसकी विशेषता हो जाती है। घोर कलयुग के बावजूद अगर इंसानियत और मानवता जिंदा रहे تو اس کی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے. طوفان تو چاروں طرف ہیں، وہ تو چل رہے ہیں، بدبو چاروں طرف ہے، چاروں طرف اتھل پتھل منی بچی ہوئی ہے، لیکن ایک سنت مہاپرش بھکت جن ہوتے ہیں جو سجن پرورتی ہوتی ہے، وہی شان ہوتے ہیں دھرتی کے لیے. ورنہ تو آج مانو جس وپریت دشا کی طرف چل رہا ہے، ایسی گھنونے حرکتیں کر رہا ہے، اور ایسا کہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا ہے. وہ پہلے بھی داس نے کئی دفعہ کہا کہ ایک مچھلی کے لیے بگلا، سانپ کے لیے نیولا، اسی پرکار سے شیر کے لیے بکری، لیکن انسان کے لیے انسان. کہ وہاں تو پھر بھی دوسری سپیسیز والے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، لیکن یہاں تو انسان ہی انسان کو کھا رہا ہے. وہ بھی ایک شاعر کی پنکتی داس نے انیکوں دفعہ کہی کہ پٹاری کو بند کر لیا سپیرے نے، یہ کہتے ہوئے کہ آدمی کو ڈسنے کے لیے آدمی ہی کافی ہے. کہ سانپ میں کیا چھوڑوں، سانپ بیچارے کیا نقصان کریں گے. کرتے ہیں اکثر، ہمیں بتاتے ہیں، کہیں ہم ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں کہ اتنے پوائزنس سنیکس ریپٹائلز، وہ اتنے پوائزنس ہیں اور ان سے اتنوں کی جانیں گئیں، لیکن انسان کے ہاتھوں اس سے کہیں ادھک جانے جا رہی ہیں، کہیں ادھک جا رہی ہیں. تو آدمی کو ڈسنے کے لیے آدمی ہی کافی ہے. تو اس پرکار سے انسان کیا کیا کر گزرتے ہیں، کوئی ان کو خیال نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں. پھر سے ایک سکسٹیز کی مووی کا، ایک دیش پریم کی مووی تھی، اور اس میں اسی طرح سے کچھ ابھیویکتی ہو رہی تھی. ایک درشیہ کھینچا جا رہا تھا کہ یہ کیسی رات ہے، کالی رات ہے، اور اس میں وائلنس اور جنگوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس وقت حال ہی میں جنگ ہو کے ہٹی تھی ہندوستان اور پاکستان کی. تو اس میں ایک پنکتی آتی ہے کہ لگتی ہے کسی ماں کے دل میں سیما پہ جو گولی چلتی ہے، کہ گولی تو سیما پہ چلتی ہے لیکن لگتی ہے وہ ماں کے دل کو. وہ ماں جہاں بیٹھی ہوئی اپنے بچے کو جنمتی ہے، پالتی ہے، اور کس طرح سے اس بچے کے کو اس طرح سے اس وائلنس کے کارن ہانی پہنچی. تو یہ کہنے کا بھاو یہ ہے کہ اس پرکار سے آج انسان کس قدر جا رہا ہے، اتنی گراوٹ کی اور جا رہا ہے، اور یہاں پر اسی مانوتا، اس جرجر ہوتی ہوئی مانوتا، اس الوپ ہوتی ہوئی مانوتا، اس کمزور ہوتی ہوئی مانوتا کو پھر سے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے مہاپرش سنت جن بھکت جن اور صدیوں سے یوگوں سے گرو پیر پیغمبروں کی سکشاؤں کو سمکش رکھ کر اس کو اس کے اوپر چل کر اسی مانوتا کو زندہ رکھنے کے لیے. شکاگو میں بھی داس کہہ رہا تھا کہ مانو تو زندہ ہے لیکن مانوتا مری ہوئی ہے، مانوتا مر گئی اور مانو زندہ ہے. تو اگر مانوتا مر گئی اور مانو زندہ ہے پھر تو چلتی پھرتی لاشیں ہی کہی جائیں گی، کہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کہ چل پھر رہی ہیں لیکن لاش ہے، کیونکہ مانوتا تو مر چکی ہے. جب مانوتا ہی مر گئی ہے تو پھر مانو زندہ کیا ہے؟ تو اس پرکار سے اسی مانوتا انسانیت کو قائم کرنے کے لیے بہت بہت تپ تیاگ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اتنی آسانی سے مانوتا بچ جاتی یا مانوتا کو بچایا جا سکتا ہے یا مانوتا کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اتنا سرل کاریہ ہوتا تو ہر انسان ایک ہی اشارے میں وہ اوستھا پراپت کر لیتا. لیکن اشارے کیا، یہاں تو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے تھک جگے، کتنا کچھ کرنا پڑا، کتنے بلیدان کرنے پڑے، کتنا کچھ سہنا پڑا، लेकिन फिर भी मानव है जो सीखने को तैयार नहीं है, संभलने को तैयार नहीं है। जैसे इसने ठान लिया है कि मैंने तो नुकसान ही करना है, अपना भी और औरों का, ऐसे बावरे युगों युगों से हमें देखने को मिले हैं कि कुछ भी हो जाए अपना नुकसान करेंगे, औरों का नुकसान करेंगे। इस प्रकार से इंसानों को उस दिशा की तरफ ले जाने के लिए, वैसी दशा प्रदान करने के लिए महापुरुषों संतों ने कितने कितने बलिदान दिए, कितनी कुर्बानियां दी कि मानवता जिंदा रहे। मानवता जिंदा रहे का मतलब कि धर्म जिंदा रहे, क्योंकि मानवता ही तो सच्चा धर्म है। अगर मानवता जिंदा है तो धर्म जिंदा है, और अगर मानवता ही मर गई तो फिर धर्म भी धर्म, जैसे इंसान को कह रहे हैं चलती फिरती लाशें हैं, फिर तो धर्म भी वही कुछ है। अगर धार्मिक क्षेत्र में भी मानवता इंसानियत मर गई है तो फिर तो वो धर्म भी उसी दायरे में आ जाते हैं, फिर तो उनको भी वही कुछ उसी दृष्टि से देखा जाता है। मजबा वाले लड़ लड़ मरदे, असल बात नु मूल ना फर्दे। कि मजबा वाले मजब मिल्लत की दीवारें, जहां पर सिर्फ मन को और कठोर किया जाता है, निर्दयी बनाया जाता है, हिंसक बनाया जाता है, मनों में घृणा के बीज बोए जाते हैं, तो मजबा वाले लड़ लड़ मर दे, असल बात नु मूल ना फड़ दे। कि जो असल बात है वो तो पकड़ी ही नहीं है, कि इंसानियत ही तो सच्चा धर्म था, इंसानियत को ही मार डाला हमने, कुचल डाला, कोई दया बाकी नहीं रही, कोई दर्द बाकी नहीं रहा, कोई प्रेम बाकी नहीं रहा, तो असल बात तो पकड़ी ही नहीं। असल बात मूल बात ही पकड़ी ही नहीं तो फिर हम रहे कहां पर धार्मिक, और फिर धर्म कहलाने के हक भी खो चुके। तो इसलिए कहने का भाव केवल इतना ही है कि संत महात्मा भक्त जनों ने वो युगों युगों से यही एक बात मन में भरने के लिए ये जतन और प्रयास किए, और इस प्रकार से जो जो भी संतों के असर को ग्रहण कर गया, जिस जिसने भी अपना नाता इस सत्य से जोड़ लिया, जो संतों ने जोड़ा इस सत्य को, सत्य के साथ नाता जोड़ा, और जिन्होंने भी ये जागृति प्राप्त कर ली, इस गफलत की नींद से उठ गए, और इस प्रकार से उन्होंने जहां पर ये सच की लखता कर ली, तो वहीं पर ही एक मानवता वो स्थापित होती चली गई। एक जीवन का जहां ध्येय पूरा होता चला गया, जो हर इंसान का ध्येय था, मकसद था कि एक सत्य की प्राप्ति करनी, सत्य के साथ नाता जोड़ना, सत्य का बोध हासिल करना और सत्य को आधार बनाकर इस जीवन के सफर को तय करना। तो उस सत्य से ही नाता संतों महापुरुषों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने जोड़ा, जो असत्य को ही सत्य मानते रहे, मिथ्या को ही सत्य मानते रहे, शाश्वत मानते रहे, क्षण भंगुर को शाश्वत और असत्य को सत्य मानते रहे। वो इसी कारण, क्योंकि सत्य जाना नहीं था, इसलिए असत्य को सत्य मानते रहे, और जब सत्य ही जान लिया तो फिर असत्य को सत्य कैसे मान सकते थे। फिर तो वो भ्रम सारे मिट गए, वो सारे भ्रम जो अज्ञानता के कारण थे, मिथ्या को सच मानते रहे, जो मिथ्या थी उसको सच मानते रहे, जो चलायमान संसार इसको मानते रहे थे, ये तो रहेगा, मैं भी रहूंगा, संसार भी रहेगा। इस प्रकार से ये मान्यताएं कितनी प्रबल रही हैं, और जब ये सच्चाई का सामना हो गया, सत्य का सामना हो गया, तो तब मालूम पड़ा कि वाकई ही वो तो सब मिथ्या थी, वो तो चलायमान था जिसको मैं शाश्वत मानकर चल रहा था, और उसी के कारण, जैसे कि कांच के कारण हीरे को तज रहा था, हीरे को छोड़ रहा था, कांच को अधिक कीमती मान रहा था, इस कांच को ही सब कुछ मान रहा था। तो इसलिए कच दी मंडी च सच दा गाहक कोई कोई, कि इस कांच की मंडी में सच रूपी हीरे के गाहक कोई कोई होते हैं, हर कोई नहीं होता है, कोई कोई होते हैं। और वाकई ही जो हीरे को अपना लेते हैं जान जाते हैं कि कांच के मुकाबले में हीरा ही कीमती है। और अगर हीरे से सामना ही नहीं हुआ, हीरा हिस्से में ही नहीं आया, फिर तो कांच को ही हीरा मानकर चलते हैं। और कांच को जब हीरा समझ के बाजार में बेचने जाएंगे तो क्या मूल मिलेगा, क्या मूल मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हीरे की कीमत है, इस सत्य की कीमत है, सच्ची संचो सच्ची वणजो, कि सच का ही संचय करना, सच का ही वणज व्यापार करना, जो सच्चा सौदा हम अक्सर सुनते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो छोटी उम्र में जो किया आज तक उसका जिक्र है, आज तक उसकी अहमियत बताई जाती है। तो साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी कि सच के ग्राहक नहीं है, झूठ के ऊपर फिदा है, जो भी फिदा है झूठ के ऊपर फिदा है। साचे का कोई ग्राहक नहीं, ये कबीर जी ने कहा कि सच के ग्राहक नहीं है। और उधर कहा जा रहा है कि सची संचो सची वणजो, कि सच का ही संचय करो, सच का ही वणज का व्यापार करो। लेकिन नहीं, इंसान की वही फितरत फिर सामने आ जाती है। तो इसीलिए एक महापुरुष भक्त जनों के यही कथन रहे हैं, यही उनके पैगाम रहे हैं, यही उनके संदेश रहे हैं, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, किसी दौर की बात कर लें, किसी रूप की बात कर लें, हम चाहे राम जी की बात कर लें या कृष्ण जी की बात कर लें या फिर हजरत ईसा मसीह जी की बात कर लें या हजरत मोहम्मद साहब की बात कर लें या श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बात कर लें या कबीर जी रविदास जी या तुकाराम जी नामदेव जी बतन्ना जी वैमन्ना जी, पता नहीं कितने कितने नाम भिन्न भिन्न संस्कृति में पैदा हुए, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले और एक मत, अलग अलग समय पे जन्म लिया, अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां, लेकिन उनकी मत एक ही, एक ही मत, एक ही मत के सत्य के सिवाय इंसान तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है, जीवन को निखार मिलने वाला नहीं है। एक मत है सबकी। हैरानगी होती है जब दास हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, संत तुकाराम जी की, नामदेव जी की, समर्थ गुरु रामदास जी की वाणी, वहां पर मुक्ताबाई सहजोबाई, पता नहीं कितने ऐसे हैं भक्त जन जिन्होंने मराठी भाषा में ऐसे ऐसे वचन बोले हैं। और जब कबीर जी की वाणी ध्यान में आती है तो कोई अंतर ही नहीं नजर आता, बिल्कुल सेम, वही कुछ, बिल्कुल वही कुछ अभिव्यक्ति। चलो महाराष्ट्र के संत तो हम कहते हैं कि नामदेव जी इत्यादि कहीं नॉर्थ में भी आए थे और नॉर्थ में आए थे, चलो कहीं पर हरिद्वार या बनारस या इधर उधर इस प्रकार से कहीं एक्सचेंज ऑफ या फिर इन्फॉर्मेशन गैदर होती हैं। और जब बात करते हैं बोतन्ना जी व मन्ना जी आंध्र प्रदेश निरोल तेलुगु भाषा, और हैरानगी होती है जब हैदराबाद या भीमावरम ताड़ेपल्ली गुड़म या विशाखापट्टनम के गांव और उन स्थानों पे भी जो महापुरुष हैं उनसे जब जब सत्संग में बैठते हैं वो महापुरुषों की बोतन्ना जी की वाणी बोल रहे हैं, और जब महापुरुष ट्रांसलेट करते हैं तो रत्ती भर भी अंतर नहीं कबीर जी की वाणी से, बिल्कुल वही। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से महापुरुष संत जन किसी दौर किसी युग में भी पैदा हुए, किसी रूप में भी आए, लेकिन सबका मत एक ही है, सबका मत एक है कि हे इंसान तेरा जन्म अमोलक है, ये बहुत कीमती समय तुझे दिया गया है, ये यूं ही गंवाना नहीं है, तूने अपने मूल की पहचान करनी है और मूल की पहचान करके अपनी अज्ञानता को दूर करना है, अज्ञानता ने तुझे जो भ्रम डाले हुए थे उन भ्रमों से निजात देनी है। भ्रमों से निजात मिलेगी तो बंधनों से भी छुटकारा हो जाएगा। तो इसलिए ये पहले तो तूने ये जो ध्येय है, ये जो लक्ष्य है हर इंसान के लिए कि मैं फूल चुनने आया था, बागे हयात में दामन को खारजार में उलझा के रह गया, कि मैं इस जिंदगी को मैंने पाया था, जन्म को पाया था फूल चुनने के लिए, मैंने इस जीवन को पाया था एक सच की लखता करने के लिए, अपने आप की पहचान करने के लिए, जो कि अन्य योनियों में संभव नहीं, ये इंसानी योनि में ही संभव है। इसीलिए इस जन्म को इतनी महत्ता दे डाली है कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, मानो जन्म दुर्लभ है होत न बारंबार। ये बार बार हाथ नहीं आता है इतना मोलक जन्म, और इंसान इस जन्म को कैसे जी के जाता है, इस समय को कैसे बिता के जाता है। जिन्नी कमी नाई गुण से कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वे साईं दे दरबार। कि जिन कामों तक अपने जीवन को सीमित कर रखता है उनका तो कोई काम ही, उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। जिन्नी कमी ना ही गुण, जिनका कोई गुण ही नहीं है, जो प्रभु को परवान ही नहीं है और उन्हीं में ही उलझा रहता है, उन्हीं को महत्ता देता है, और जो काम करना है वो तो किया ही नहीं, उसको तो ऐसे झटक कर एक तरफ कर दिया कि ये तो बेकार की बात है। और बेकार की बात कहते ऐसे झटक दिया उसको, और जब फिर समय आता है फिर आत्मा की जवाबदेही होती है, फिर पता चलता है कि जिसको मैंने झटक कर एक तरफ फेंक दिया था वही तो सबसे कीमती था। लेकिन इस शरीर में जीते हुए उस मन के अधीन रहकर किस कदर अज्ञानता के तहत हम विचरण करते चले जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता कि कितना महत्व है इस सत्य की लखता करने के लिए, इस सत्य को जानने के लिए। तो औसत संगत, तमाम महापुरुषों संतों ने यही बात कही कि जागो ऐसी निद्रा से, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है, उठ जाग कुराड़े मार नहीं ये सौण तेरे दरकार नहीं। कि सौण तेरे दरकार नहीं, बहुत महंगा पड़ जाएगा सोना। उत्थिष्ठित जागृत अराइजन अवेक, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है। जिसकी प्राप्ति करने से ऐसी प्राप्ति कर ली के सच्ची दौलत तुम्हारे हाथ हो गई, ऐसी प्राप्ति हो गई, लोक और परलोक तुम्हारा मालामाल हो गया, लोक और परलोक की बाजी तुमने जीत ली, ऐसी प्राप्ति कर लो। उत्थिष्ठित जागृत, उठो जागो प्राप्त कर लो। प्राप्त करने के लिए उठो और जागो, और वो क्या प्राप्त करना है? महल माड़ियां, रिश्तेदारियां, दोस्त मित्र, भोग, इसके लिए उत्थिष्ठित जागृत नहीं, प्राप्त कर लो। वो प्राप्त कर लो जिससे मुख उजला हो जाता है, वो प्राप्त कर लो जिससे जन्म सुहेला हो जाता है, पर लोक सुहेला हो जाता है और लोक भी तुम्हारा जगमगा जाता है। वो प्राप्त कर लो, और उसी को ही इंसान अक्सर सबसे पीछे रखता है, सबसे पीछे रखता है, उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी मानता है, उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी प्रायोरिटीज कुछ और बन के रह जाती हैं। और महापुरुषों ने यहां तक कह दिया कि जिनको इतनी प्रायोरिटीज दी तो आखिर नतीजे क्या निकले? दीन गवाया दुनी सो, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। को दीन को गवा दिया दुनिया के लिए, प्रायोरिटी तुम्हारी दुनिया थी, उसको प्रेफरेंसेस कदम कदम के ऊपर, उसको तो तुमने प्राथमिकताएं दी, तो दीन गवाई दुनिया से, दुनिया की खातिर दीन को गवाया, लेकिन दुनी ना चाली साथ, दुनिया तो साथ चली नहीं, यहां तो अपनों ने भी मुंह फेर लिए, सोचा कि ये मेरा रिश्तेदार है लेकिन सिवाय गर्ज के और कुछ निकला नहीं नतीजा। और इस प्रकार से رشتہ داریاں بھی، مترتا بھی، دوست بھی، ایک ایک چیز کر کے ہم گنتے چلے گئے تو دیکھا یہی کہ دنیا کہاں پر ساتھ دینے والی ہے۔ یہ تو آگے تو کیا جانی ہے، یہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہی ہے ذریعہ جو ہمیں آگے تک بھی لے جائے گا، لیکن یہ تو یہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس پرکار سے دین گوایا دنی نہ چالی ساتھ، پائے کوہاڑا ماریا غافل اپنے ہاتھ، کہ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارنے کے سمان ایسی سمجھداری کے پرمان دیے جا رہے ہیں۔ کتنی نادانی کو سمجھداری مانتے ہیں کہ اپنے ہی پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارنا مورکھتا کے سوائے اور کیا ہے۔ تو اس لیے مہاپرش سنت جن یہ جھنجھوڑتے ہیں، بار بار اس اور ہمیں اگرسر کرتے، ہمارا دھیان اس اور دلاتے ہیں۔ تو جو واقعی ہی جاگرکتا کو پراپت کر لیتا ہے، جو ایسی اویئرنیس جیون میں لے آتا ہے، جس کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے اس جیون کو طے کرتا ہے، اس سفر کو ایک کلیان کے لیے، اوروں کو کام آنے کے لیے، ملورتن کو بڑھانے کے لیے، پیار سے پیش آنے کے لیے، راحت دینے کے لیے، یہ پھر اپنے جیون کو سمرپت کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جاگرتی آ گئی ہے، وہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے، وہ اویئرنیس آ گئی ہے۔ اب وہ ایسی اویئرنیس ریئلائزیشن آئی کہ جو خام خاک کی دیواریں کھڑی تھی، جو بکھیڑے بنے ہوئے تھے، وہ سب سپرفیشل جو اس پرکار سے کریٹ کی گئی تھی اگنورنس کے دوارا، جن کو جنم ملا تھا، وہ مٹ گئی، آدھار ختم ہو گیا۔ اگنورنس روپی آدھار مٹ گیا۔ آدھار کو ہی اگر چھیڑ دو تو عمارت بھی چھڑ جائے گی، اگر نیچے سے ہم فاؤنڈیشن کو ہی کھینچ لیں تو عمارت بھی نیچے ہی آ جائے گی، ڈھہ ڈھیری ہو جائے گی۔ تو وہ کارن جو تھا، اس کارن کو ہی مٹا دیا، اندھکار کو ہی مٹا دیا، اگنورنس کو ہی مٹا دیا۔ تو اس اگنورنس کے اوپر بیس جو بلیفس تھی، اور انہی بلیفس کے کارن ہم دیواریں کھڑی کرتے رہے، بنٹتے رہے، بانٹتے رہے، نفرت کرتے رہے، ویر کرتے رہے، جاتی روپی دیوار، بھاشا روپی دیوار، مذہب روپی دیوار، کالے گورے روپی دیوار، امیر غریب روپی دیوار، پگڑی ٹوپی والی دیوار، پتہ نہیں کتنی کتنی دیواریں ہم نے کھڑی کی ہوئی، اور وہ سب ڈھہ ڈھیری ہو گئی۔ اس پرکار سے یہ جب ڈھہ ڈھیری ہو گئی، یہ دیواریں، نفرتیں سماپت ہو گئیں، اور پھر ہم نے جیون کے سفر کو طے کیا اس جاگرتی میں، اس اویئرنیس میں، اور پھر کہاں پر گنجائش نفرت کرنے کے لیے، پھر کہاں پر وہ گنجائش گھرنا کرنے کے لیے، ویر کرنے کے لیے، نفرت کرنے کے لیے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرے کو درد دینے کے لیے، پیڑا دینے کے لیے، وہ گنجائش ہی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سنسار کے انسان کو اس کریا میں سے نکلنا ہوگا، اور اس پروسیس میں سے نکلنا ہوگا، اور اس پروسیس سے جب نکلتا ہے تو پھر واسطہ میں اس کا سنسار میں نکھرا ہوا روپ آتا ہے۔ جیسے ایک بھٹی ہوتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئرن کو ہی لے لیں، کتنے ہائی ٹیمپریچر کے اوپر بھٹیوں میں سے اس کو گزارتے ہیں، اور اس کی تمام امپیورٹیز کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، وہ نکل جاتے ہیں، اور اس کا پھر ایک ایسا فارم رہ جاتا ہے، اور اسی فارم کا ہم کیسے اپیوگ کرتے ہیں کہ وہ کتنے روپوں میں ہمارے وہ لوہا کام آ جاتا ہے۔ اگر وہ امپیورٹیز نہیں ہٹائی جاتی ہیں تب تک اس کا اس روپ میں اپیوگ نہیں ہو پاتا۔ جیسا کہ ہم کرتے ہیں، اس سے کیا یوٹینسلز بناتے ہیں یا کیا کیا اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اسی پرکار سے یہ بھی ایک بھٹی ہے، یہ گیان روپی بھٹی ہے۔ اس میں جب تک نہیں ڈلتا یہ من آتما، तब तक ये इम्प्योरिटीज हटती नहीं है और फिर सही रूप में हमारा वो रूप नहीं बन पाता है जो बनना चाहिए। इसलिए ये महापुरुष संत जनों के ही ये वचन है जो ये पहलू दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं ये पहलू कि ये पहलू है जिसकी तरफ इंसान तूने ध्यान देना है। तो औसत संगत कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन फिर जब ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं निरंतर फिर उनकी भावना पावन बन जाती है और फिर वो ही होते हैं जो मानवता की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि वही होते हैं जो सच्चे धर्म की नुमाइंदगी करते हैं। दे आर द वंस हु रिप्रेजेंट द ट्रू रिलीजन, हु आर फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, हु आर फुल ऑफ लव, हु आर फुल ऑफ कंपैशन, हु हैव टॉलरेंस, हु हैव ब्रॉड माइंडेडनेस, ओपननेस ऑफ माइंड्स एंड हार्ट्स, हु आर नॉट नैरो माइंडेड, हु हैव नो इल विल टुवर्ड्स अदर्स, हु आर एवर रेडी टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन लाइव्स ऑफ अदर्स। दे आर द वंस हु आर ट्रू रिलीजियस पर्सन्स बिकॉज दे आर द वंस हु आर फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड इन टूडेज टाइम्स वी सी स्पिरिचुअलिटी एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम रिलीजन because the ingredients which were once considered to be a part of religion, those ingredients with the times have escaped, and those ingredients were in the framework of spirituality. Spirituality in itself is a part of religion. But today, the spirituality has escaped, has vanished from religion, because now religion, most of the religions which we see, are just limited to rites and rituals, dogmas. And the other harmful aspect, okay, rites, rituals, okay, fine. Beliefs, fine. But what about love and compassion? What is being taught? What seeds are sowed in the hearts of small children going through the tender age? What we are giving them? What we are teaching them? You do not belong to that religion. These are true happenings which have happened. There are people belonging to different caste, different religion. They tell their children, make it a point, do not forget, I have come to know. You have seat in the classroom, you sit by such and such boy, and that boy doesn't belong to us. Make it a point. Make some pretext and tell your teacher to change your seat. Your shoulder shouldn't rub with that boy's shoulder because he doesn't belong to our caste. We are from a higher caste. You belong to this religion. Beware and do not establish any sort of communication with him. Or rather, today's times, we see on TV channels, news channels, that even small children are utilized as human bombs. Small children, tender age. What we are doing with them? What states of affairs are today? And that very religion, what we call religion. What happened to the compassion part? What happened to the tolerance part? Where is that? Is it, are the birds which have flown away, but this is sorry state of affairs today. So that's why spirituality is more stronger, which we have to develop. And once we develop that spirituality, then we are the ones who represent true religion. तो कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से जो एक आध्यात्मिकता वाला पहलू है वो पहलू इस कदर कमजोर होता चला जा रहा है और वाकई ही जो शायर का शेर जब इस कदर जब बच्चों का जिक्र आया तो ख्याल आ गया कि शायर का शेर वो ध्यान में आता है कि देखकर बड़ों की दुनिया छोटा सा बच्चा बड़ा होने से डरता है कि बड़ों की देख के दुनिया छोटा सा बच्चा बड़ा होने से डरता है क्या यही बड़े होते हैं क्या लेना है बड़ा होके बड़े यही कुछ करते हैं मैं छोटा ही ठीक हूं और वो भी शेरदास ने शायद शिकागो में भी पढ़ा कि इसीलिए बच्चों से नूर झलकता है क्योंकि वो शरारतें तो करते हैं साजिशें नहीं करते हैं कि वो चंचल उम्र शरारतें तो जरूर करते हैं लेकिन साजिशें नहीं करते हैं वो कॉन्स्पिरेसीज नहीं रचते हैं जो बड़े रचते हैं वो कॉन्स्पिरेसीज नहीं रचते जो धर्म वाले रचते हैं कि आज का वो दिन है आज उनका पावन दिन है आज कोई शरारत करते हैं शरारत ऐसी करेंगे तो कि शहर में कर्फ्यू लग जाएगा टियर गैस शैल छोड़ने पड़ेंगे लहू लुहान हो जाएंगे और उन लाशों में हम अपनी रोटियां पका लेंगे साजिशें बच्चे नहीं करते हैं तो कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से एक महापुरुष संत जन भक्त जनों ने युगों युगों से जिस और इस इंसानों को ले जाने की चेष्टा की जतन किए कोशिश किए तो आज भी यही एक प्रयास हो रहा है कि उसी और बड़े हैं जिस और वो तमाम पैगंबरों ने हमें बढ़ाना चाहा था जिस और हमें ले जाना चाहा था हम उसी दिशा की तरफ चलें उसी रास्ते पे चलें और जाने कि वाकई ही कल्याण किस में है उद्धार किस में है किस में वाकई ही हमारा एक रुतबा ऊंचा होने वाला है उसी और ही हम बढ़ें उसी और ही हमारे कदम आगे बढ़ें और इस प्रकार से महापुरुष संत जन उसी और बढ़ते चले जाएं और इस अज्ञानता को दूर करते चले जाएं दानवता को कमजोर करते जाएं मानवता को मजबूत करते चले जाएं यही एक शुभकामना यही प्रार्थना और भक्तजन संतजन वाकई ही वो यही देन देते चले जाते हैं वो संसार कैसा है संसार क्या है वो संसार ने क्या किया है संसार क्या करता है वो उसका असर नहीं लेते हैं क्योंकि संसार की बहुताद है ये तो पहले भी कहा है कि संत न छोड़े ही संत ही चाहे कोटक मिले असंत कि संत अपनी संतई को नहीं छोड़ते हैं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा और दास अक्सर कोट करता है उन्होंने कहा कि आई विल अलाउ नो बॉडी टू नैरो एंड डीग्रेड माई सोल बाय मेकिंग मी हेट हिम आई विल नॉट अलाउ एनी बॉडी टू नैरो एंड डीग्रेड माई सोल बाय मेकिंग मी हेट हिम वो करता है कर रहा है लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूं ना ही मैंने उस जैसे बनना है मैं अपनी आत्मा को नीचे दर्जे में नहीं लेके जाऊंगा कि मैं भी नफरत करने लग पड़ूं मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा reins are very much in my hands. He's nobody to control me. कि वो चाह रहा है कि मैं भी अपना आत्मा को पलीत करूं, मैं क्यों होने दूंगा? उसके हाथ में तो मैं ये लगाम देने वाला नहीं हूं. तो कहने का भाव कि संत न छोड़े ही संते ही, चाहे कोटक मिले असंत, कि संत अपने उस संते ही पे कायम रहते हैं, चाहे लाख अंधकार हो, चाहे लाख संसार की प्रवृत्तियां हो और प्रभाव हो, संत अपने ही मार्ग पर चलते जाते हैं, नेकी ही बांटते चले जाते हैं, प्यार ही बांटते चले जाते हैं, मिलाते जाते हैं एक दूसरे को गले लगाते चले जाते हैं. और इस प्रकार से संतों का महत्व इस संसार में, जहां से दास ने बात आरंभ की थी कि ये संसार का बचाव है, तो संत प्रवृत्ति के कारण, सज्जन प्रवृत्ति के कारण. तो दास ज्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक वी हैव अप्रोच द टाइम विच वॉज फिक्स फॉर टूडेज कॉन्ग्रीगेशन फ्रॉम 6 to 9 PM. एंड आई ऑल्सो नो दैट टुमारो इज अ वर्किंग डे एंड मैनी ऑफ यू हैव टू ट्रेवल certain distances to be back home and then to be available for your jobs or business in the morning or to fulfill other responsibilities. So I'm very happy to be here once again in Washington. And last time when I was in North America 2 years back in 2009, I somehow couldn't visit this place, although I did visit New York and New Jersey area and certain other cities. And during this time, in this visit, as has been mentioned, that I left India on 8th of August. And on the 9th, I went to Dublin in Ireland. And on 11th, I was in Belfast, Northern Ireland, for the first time. Dublin I happened to visit after a gap of 6 years, because January 2005, first time I visited Dublin. And this time I happened to visit Belfast for the very first time. And there too, that Belfast has been in the news for such a long time. Once again, for that matter, where religion was fighting each other and there was so much violence. So, from there to back to England and various cities in England, then on the 24th of August, entering North America from Toronto, Canada. And since then, from 24th of August till date, in North America, various cities in Canada, whether it was Toronto or Montreal or Edmonton or Calgary, Vancouver or Victoria or Mission Abbotsford, or entering America from Seattle, and Seattle, then San Francisco, Tracy, and then to Los Angeles, Valley area, and Corona, Norco area, and then to from there to Houston, and Houston, in Seattle I went after 1998. That was the last time I went to Seattle. And Houston, I think a pretty long time, that also around a decade, 10 years back. And then from Houston to Chicago, where most of you know that a newly constructed Satsang Bhavan, the formal opening ceremony was performed there. And from Chicago yesterday evening to Washington, and tomorrow to Florida, Miami, and St. Myers and Lauderdale, etc. And then to St. Martin, the last station of the tour. So it's a long journey and long, and so many places I got a chance to visit. And it gave me happiness to meet saints and other people who, for the some of them, attended the congregation for the very first time, and also many places as today, we had representation from the Indian High Commission, and we listened to him. He also expressed his thought, and also we have Arunaji here, and who is serving the nation America and serving the community and people over here. And similarly, so many mayors and Lord Mayors and so many councillors and MPs during this trip have been attending or sending their goodwill messages. And so it has been a very fruitful trip till now, and praying to God that rest of the trip also proves likewise. And today itself, while during when I was visiting the under construction site which is going on in Washington DC for the local Sangat, which is under construction, I visited that place, and while I was coming back, I happened to talk to Raj Mataji, who just arrived in Birmingham from Paris, because she was on Europe tour. She visited Austria, Innsbruck, and various cities, Verona, Valencia, etc. in Italy, and then to Barcelona, Spain, and Paris was the last station of Europe. And she had just landed in Birmingham, and she was driving to the Bhavan. So when I mentioned that, she said, "Where are you today?" I said, "I am in Washington." And she said that, "Convey my good wishes to the saints of Washington too." To unki bhi shubhkamna aur unke bhi aashirwad. To das inhi shabdon se aur kuch na kehta hua aapse ijazat chahega. Satsang ji dhanyavaad.